थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है। मंजिल वो हमारी है। जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है। है ताज रखा उस ताज को पाना है, उस ताज को पाना है। अब कस लो कमर अपनी, शैतान से लड़ाई है। वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है। मंजिल वो हमारी है। जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है। दुनिया ये नहीं अपनी, सब कुछ बेगाना है। कुछ रोज यहाँ रहना फिर छोड़ के जाना है, फिर छोड़ के जाना है। रहबर वो हमारा है, पहचान पुरानी। निशाना है, वो क्रूस निशाना है। मंजिल वो हमारी है। जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी। दुख दर्द बहुत इसमें है, जुल्मों सितम सहना। हमदम वो हमारा है, रंजीदा नहीं रहना, रंजीदा नहीं रहना। आता है कोई देखो यीशु की सवारी है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय एक का समापन किया था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय दो से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर जीवित और सत्य वचन के लिए। इस समय जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुनता है निश्चित रूप से आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके हृदयों को स्पर्श करने पाए ताकि वे नम्र और दीन होने पाएं, आपके वचन पर विश्वास करने पाएं, जानने पाएं पिता परमेश्वर कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन का उद्धार करना चाहते हैं। आज हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय पापमय जीवन जी रहे हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, उनके जीवन से आप बोले और बातचीत कीजिए। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्याय दो से अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। अध्याय दो से हम कलीसिया अर्थात मसीह के देह के विषय में चर्चा सुनेंगे। प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया विश्वासियों की देह है जिसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सौंपा है और यूहन्ना रचित सुसमाचार में वह उसके लिए प्रार्थना भी करता है। मेरे मित्रों, अध्याय तीन के बाद कलीसिया का उल्लेख नहीं है। अध्याय चार तक कलीसिया का नाम 19 बार आया है, परंतु अध्याय चार से अध्याय 20 तक श्वेत सिंहासन का न्याय है और इसमें हम कलीसिया का नाम एक बार भी नहीं पाते हैं। अब एक स्वाभाविक प्रश्न यह है, इस समय कलीसिया कहाँ है? निश्चय ही इस पृथ्वी पर नहीं है, वह इस पृथ्वी पर से उठा ली गई है। मेरे प्रियो, इन सात पत्रों की व्याख्या एवं प्रासंगिक तीन गुना है, तो आइए हम देखते हैं उन सात कलीसियाओं के बारे में। और पहली बात है वर्तमान। यह संदेश यूहन्ना के युग की स्थानीय कलीसियाओं के लिए भी था। मैं आपको इन दो अध्यायों में इन कलीसियाओं की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित कराना चाहता हूं। मेरे मित्र ने मुझे बताया है कि वह वहां जा चुका है और बार बार जाना चाहता है क्योंकि ये स्थान बाइबल के निकट उसे लाते हैं और मैं भी सोचता हूं कि मुझे भी जाना चाहिए। आप इसराइल की अपेक्षा इन सातों स्थानों का भ्रमण करें तो बाइबल के अधिक निकट आप आएंगे। उनके खंडहरों में भी एक संदेश है। यूहन्ना जिन कलीसियाओं को लिख रहा है उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानना क्या ही भला है। सर विलियम रामसे का कहना है कि इन सातों पत्रों का लिखने वाला वहां रह चुका था और वहां की स्थानीय परिस्थितियों से पूर्ण रीति से परिचित था। और दूसरी बात हम देखते हैं मिला जुला संदेश। प्रत्येक पत्र में कलीसिया का मिला जुला चित्रण है। प्रत्येक पत्र में जो संदेश है वह हर एक युग की कलिसियाओं के लिए है। उदाहरण के लिए, जब आप पिर्गामोस की कलिसिया के लिए संदेश पढ़ते हैं, तब वह संदेश आपकी कलिसिया के लिए भी और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए भी लिखा गया है। कहने का अर्थ है, यह उस समय और आज भी कार्य करता है। तीसरी बात है समय का क्रम। इन 7 पत्रों में कलिसिया के इतिहास की प्रगतिशील चित्रावली है। पेंतिकोस से मसीह के आगमन तक, अटारी से लेकर बादलों में उठाए जाने तक, कलिसिया के इतिहास के 7 स्पष्ट युग हैं। इफिसुस प्रेरितों की कलिसिया का चित्रण है और लौदिकिया विधर्मी कलिसिया का चित्रण है। यह भविष्यवाणी मुख्यतः पूरी हो गई है और अब कलिसिया का इतिहास बन चुकी है। इस कारण ये अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब मैं इन 7 पत्रों में प्रभु यीशु द्वारा काम में ली गई रूपरेखा आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात है, प्रत्येक कलिसिया को लिखते समय यूहन्ना अध्याय 1 में महिमामय प्रभु यीशु के दर्शन के कुछ अंश प्रस्तुत करता है। उसने किसी विशेष उद्देश्य के निमित्त कोई विशेष बात लिखी है। और दूसरी बात है, हर एक पत्र उस कलिसिया के दूत को लिखा गया था। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे विचार में कलिसिया का दूत वहां का पास्टर था। और तीसरी बात, आरंभ में वह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, परंतु किसी किसी पत्र में यह संदिग्ध है। और चौथी बात है, पहले तो वह प्रशंसा के शब्द कहता है, तदुपरांत दोषारोपण करता है, परंतु स्मुर्ना और फिलाडेल्फिया का दोषारोपण नहीं है। स्मुर्ना एक शहीद कलिसिया थी, अतः वह उस पर दोष नहीं लगाता है, और फिलाडेल्फिया की कलिसिया उसका दूत कार्य कर रही थी, अर्थात वचन का प्रचार करती थी, अतः उस पर भी दोष नहीं लगाया गया। लौदिकिया के लिए वह प्रशंसा के शब्द नहीं लिखता है, क्योंकि वे धर्म के विषय में पथभ्रष्ट थे। और पांचवी बात हम देखते हैं, प्रत्येक पत्र के अंत में एक चेतावनी है। कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। पुस्तक के इस मुख्य भाग में 2 ऐसे भाग हैं, हम जो बातें हो रही हैं इस प्रकार से पाते हैं। कहने का अर्थ है, जो बातें हो रही है, अर्थात कलिसिया संबंधित बातें देखते हैं। इन 7 पत्रों में से प्रत्येक पत्र प्रभु यीशु के द्वारा किसी एक कलिसिया को भेजा गया संदेश है। मेरे प्रियो, आज हम इस तथ्य से परिचित नहीं है शायद कि पहली और दूसरी शताब्दी में पत्र लिखना और यात्रा करना रोमी साम्राज्य का सामान्य व्यवहार था। अतः ये पत्र अपना महत्व रखते हैं, और सबसे मुख्य बात तो यह है कि ये पत्र प्रभु यीशु स्वयं लिखवाता है। अतः इफिसुस की कलिसिया के नाम 2 पत्र हैं, एक पौलुस का पत्र और दूसरा प्रभु यीशु का पत्र, जिसे यूहन्ना ने लिखा है। इन पत्रों को पढ़ने वाले असंख्य जन थे, यद्यपि रोमी साम्राज्य में अच्छी अच्छी कलिसियाएं थी। इन 7 कलिसियाओं का विशेष उल्लेख एक उद्देश्य के निमित्त था। एक कारण यह भी था कि वे पहली, दूसरी वरन तीसरी शताब्दी में रोमी साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में थी। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए थे कि वे पूर्व और पश्चिम का समागम स्थल थे। 2000 ईस्वी पूर्व में वहां तुर्किस्तान के पश्चिम तट पर सभ्यता का विकास हो चुका था। वह क्षेत्र अति रमणीय है और समृद्ध भी है। प्राचीन काल में वह हित्ती जाति का केंद्र था। इफिसुस भी 2000 ईस्वी पूर्व में हित्तियों द्वारा बसाया गया था, और स्मुर्ना भी। पिर्गमोन बाद में बसा, और उसके बाद थुआतीरा और सर्दिस उसके बाद भी। मेरे प्रियो, इन नगरों को विकसित करने वाला वास्तव में सिकंदर महान था। यूनानियों के देवी देवताओं की तुलना में इन नगरों के आदिवासियों के देवी देवता अधिकतर पशुओं के रूप में थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वे प्राचीन सभ्यता थे और उनका मेल यूनानी सभ्यता से हुआ। इफिसुस नगर की जनसंख्या लगभग 2,00,000 थी और वहां एक बहुत बड़ा रंगमंच था जिसमें लगभग 20,000 लोग बैठ सकते थे। वह छुट्टियां बिताने का एक अच्छा स्थान था और रोमी सम्राट वहां आया जाया करते थे। वह नगर सफेद संगमरमर का बना था, जिसकी प्रशंसा पौलुस ने भी की है। यदि हम यह सोचें कि वहां सुसमाचार का प्रभाव अधिक नहीं था, तो हमारा सोचना गलत है। इफिसुस में सुसमाचार का प्रभाव का प्रमाण उनके बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर निर्मित 4 स्तंभ हैं, जिन पर क्रूस बना है, और ये स्तंभ मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना को समर्पित थे। मेरे प्रियो, आज वहां एक भी स्तंभ नहीं बचा है और उस पर क्रूस का चिन्ह भी नहीं है। सुसमाचार के प्रभाव के अन्य परिणाम भी हैं। उदाहरण स्वरूप, वहां के मंदिर आगे चलकर आराधनालय बन गए थे। पौलुस और यूहन्ना की सेवा के परिणाम स्वरूप वहां बहुत बड़ी संख्या में मसीही जन थे। पौलुस ने इफिसुस में महान सेवा की थी और लुका लिखता है प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 10 पद में, यहां तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। सब ने विश्वास नहीं किया, परंतु वचन हर एक ने सुना। यह संभवतः कलीसिया के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान था। तो मेरे मित्रों, इस परिचय के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 में आते हैं, जिसका विषय है विश्व में कलीसिया। इफिसुस एक सुंदर नगर तो था, साथ ही वह एशिया का एक मुख्य नगर भी था। उसे एशिया का असार संसार कहा जाता था। किसी ने उसे एशिया की ज्योति कहा है। वह वहां का धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था, जिसका प्रभाव पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों पर पड़ता था, अर्थात एशिया और यूरोप दोनों पर उसका प्रभाव था। पौलुस ने बंदरगाह में उतरते ही संगमरमर का बना एक चौड़ा मार्ग देखा और जब वह नगर के भीतर चलने लगा तो वहां अति सुंदर इमारतें, मंदिर और उपहारों की दुकानें थी। मार्ग में चलते समय उसके दाहिनी ओर एक बड़ा बाजार था और जब वह आगे बढ़ा तो वहां पहाड़ी के एक ओर रंगमंच था, जिसमें 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, और उसके बाईं ओर एक विशाल गोलाकार प्रतियोगिता स्थल था जिसमें 1,00,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। इफिसुस में कभी तो 20,00,000 के लगभग लोग आते थे और यहीं पर पौलुस ने अपनी महान सेवा की थी और उसके बाद यूहन्ना वहां का पास्टर हुआ। मेरे मित्रों, नगर का आरंभिक विकास डायना के मंदिर से आरंभ हुआ था, क्योंकि वहां के प्राचीन निवासी डायना की उपासना करते थे। पहला मंदिर तो समुद्र के किनारे था और नीचा होने के कारण उसके फर्श पर जो लकड़ी का था, समुद्र का पानी टकराता था, परंतु धीरे धीरे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से मंदिर का निचला भाग भर गया और सिकंदर महान के समय वहां पानी नहीं था। वहां नदियों के पानी में इतनी मिट्टी होती है कि पानी गाढ़ा हो जाता है। जिस रात सिकंदर जन्मा, उस रात वह मंदिर जल गया था। इफिसुस जीतने के बाद सिकंदर ने देखा कि वहां का बंदरगाह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भर रहा है, तो उसने वह नगर अपने सेनापति को दे दिया और उसके सेनापति ने निवासियों को ऊंचे स्थान पर बसा दिया। इफिसुस के खंडहर आज भी वहां ऊंचे पर देखने को मिलते हैं। पौलुस ने इसी नगर में सुसमाचार सुनाया था। जी हाँ, पुराने डायना मंदिर के स्थान पर दलदल में लकड़ी के कोयले और जानवरों की खाल की नींव भरी है और सिकंदर महान ने डायना के नए मंदिर के निर्माण में अगुवाई की जो प्राचीन संसार का आश्चर्य बन गया। वह यूनानियों द्वारा निर्मित सबसे बड़ा मंदिर था। उसमें 56 फुट ऊंचे 100 से अधिक स्तंभ थे, जिनमें से 36 स्तंभ हाथों द्वारा तराशे गए थे और ये स्तंभ तथा फर्श संगमरमर के थे। दरवाजे सरू की लकड़ी के थे और सीढ़ियां साइप्रस टापू से लाई गई अंगूर की लकड़ी की थी। वह मंदिर विश्व बैंक का काम करता था, वहां पैसा जमा किया हुआ था। वह चित्रकला प्रदर्शन कक्ष भी था, उसमें बड़े बड़े प्रसिद्ध कलाकारों की चित्रकला रखी हुई थी। पर्दे के पीछे डायना की मूर्ति थी। वह प्रजनन की देवी मानी जाती थी और उसके एक हाथ में मुकद्दर और दूसरे हाथ में त्रिशूल था। वह अन्य जातियों की सबसे अधिक पावन मूर्ति थी। सन 256 में जर्मनी के आदिवासियों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, परंतु पौलुस के युग में वह मंदिर अपनी चरम सीमा में था। मेरे प्रियो, यदि आपको इस्तांबुल जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आप पवित्र सोफिया आराधनालय जाकर के देखें। डायना मंदिर के स्तंभ जस्टिनियम ने निकलवा कर वहां लगाए थे। उन्हें देखकर ही आपको डायना के मंदिर के वैभव का बोध हो जाएगा। डायना के मंदिर और उसके आसपास शराब पीना और व्यभिचार बहुत अधिक था, क्योंकि ये दोनों ही डायना और बकर्स देवता की उपासना के भाग थे। पौलुस अपनी तीसरी प्रचार यात्रा में इफिसुस आया था और 2 वर्ष तक उसने तुरुन्नुम की पाठशाला में प्रचार किया। पौलुस अपना अनुभव पहला कुरिन्थियों की पत्री 16 अध्याय उसके 9 पद में लिखता है, मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। बाद में वहां प्रेम का प्रेरित गर्जन का पुत्र यूहन्ना पास्टर होकर के आया था। वहां से उसे पतमोस में काला पानी की दंड दिया गया था। 10 वर्ष पश्चात वह मुक्त होकर फिर वहां आया और वहीं उसके जीवन का अंत हुआ। उसकी समाधि वहां सबसे ऊंचे स्थान पर बनी हुई है। मेरे मित्रों, इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु का पत्र भौतिकवाद, पाश्विक आचरण, घृणित अन्य जाति अभ्यासों और अंधकार में घिरे अन्य जाति लोगों के मध्य इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु अपना संदेश भेजता है। यही कारण है कि मैं इस संदेश को सबसे अधिक महत्वपूर्ण संदेशों में से एक मानता हूं। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। मेरे प्रियो, देखिए, प्रभु यीशु ने कलीसियाओं को अपने हाथों में लिया हुआ है। आज तो कलीसियाएं उसके हाथ में नहीं है, परंतु उस समय थी। वह फिरता है, अर्थात वास्तव में विचरण करता है। मेरे विचार में वह आज भी विचरण करता है और आज भी कलीसिया की देखभाल करता है। जी हाँ, कलीसिया के लिए उसके पास सराहना के 7 वचन हैं। मेरे प्रियो, इन 7 वचनों को हम अपने अगले अध्ययन में देखेंगे। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही कलीसिया के उस महत्व को और महत्वपूर्ण बातों को, संदेशों को समझ लिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई। शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, 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 यीशु के गुणगान।